पांच तब्दील होती है जो नियम से होती ही है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने कणों की मूल प्रकृति, उनकी उत्तर प्रकृति और क्षोक्षण इसके बारे में भी समझा है। ज्ञानागम दृष्टिनागम मोहिनी अंतरा ये तो घाटी कर्म के हैं और जो वेदनी आयुष्मान कर्म जो है वो अघाती कर्म के लिए। ये सर्वघाती और देशघाती के लिए जो हमने चर्चा की वो घाती कर्मों के जो भेद, अघाती कर्मों में तो वे अघाती ही है तो इसमें सर्व और देशघाती का ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं है। तो ये जो घाती कर्म है उसमें कुछ प्रकृतियां सर्वघाती प्रकृतियां और कुछ ऐसी प्रकृतियां वो देशघाती प्रकृतियां। तो उसमें हमने देखे थे कि ये जो सर्व सभी जो भक्ति कर्म है ज्ञानावरण रचनावरण मूढ़ मंत्र है उसमें जो अनुभाग की अपेक्षा जो स्पर्धक पाए जाते हैं वो स्पर्धक के चार हमने भाग देखे, चार प्रकार देखे लता दारू अस्थि और शैल। तो उसमें जो सबसे अधिक तीव्र अनुभाग वाले जो है वो शैल है उसमें भी अनंत स्पर्धक है। उससे थोड़े मंद अनुभाग वाले ऐसे जो अस्थि वाले या अस्थि भाग वाले स्पर्धक उससे भी थोड़ा कम अनुभाग इसमें है वो दारू भाग वाले और सबसे कम अनुभाग वाले जो लता भाग वाले स्पर्धक पाए गए। ये जो स्पर्धक है इसमें दो प्रकार हमने देखे थे सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। उसमें से शैल अस्थि और दारू का भूमा ये दो सर्वघाती स्पर्धक है। दारू में से एक भाग और जो लता भाग है वे सभी स्पर्धक है वे देशघाती स्पर्धक। तो जो जो प्रकृति सर्वघाती है जैसे केवल यानावरण ये सर्वघाती प्रकृति तो उसके सभी स्पर्धक कौन कौन से प्रकार के थे शैल अस्थि और दारू होगा सर्वघाती स्पर्धक। अब जो जो देशघाती प्रकृतियां है उनमें सभी चारों ही प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं यानी शैल अस्थि दारू और लता भाग सभी यानी सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। अभी हम जो हमने इतनी सारी प्रकृतियां देखी भारतीय कर्म की कितनी चौबीस देखी थी हमने सैतालीस देखी तो उसमें ज्ञानावरण में तो हमने विभाजन कर देखा कि जो केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती प्रकृति है और मति ज्ञानावरण उप ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण मन परे ज्ञानावरण ये देशघाती प्रकृति। तो क्या ऐसी ही डिविजन आगे भी बनती है दर्शनावरण भूमि अंतरा तो उसकी चर्चा। अब जो दर्शनावरण की हमने कितनी कौशल प्रकृति देखी थी यार नौ तो उसमें हमने देखा था केवल दर्शनावरण ये सर्वघाती प्रकृति है अपने प्रतिपक्ष का सर्वघात का। तो प्रतिपक्ष कौन है इसका केवल दर्शन। तो केवल दर्शन ये जो जीव का स्वभाव है वो तो पर्याय में प्रकट नहीं होता नहीं प्रकट होता जीव की अपनी योग्यता परंतु वहां सामने निमित्त रूप से केवल दर्शनावरण कर्म का उदय है तो केवल दर्शनावरण ये सर्वघाती प्रकृति है। तो उसमें स्पर्धक कौन कौन से होंगे शैल अस्थि और यानी जिसको हम सर्वघाती स्पर्धक है चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण ये देशघाती प्रकृति है। तो उसमें स्पर्धक कौन से होंगे हाँ उसमें तो सर्वघाती स्पर्धक भी होंगे और देशघाती स्पर्धक भी होगी। तो शैल अस्थि दारू और लता ये सब उसमें पाए जाएंगे परंतु ये चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन जो हमें प्रकट है अभी हम जरा देखते हैं चक्षु दर्शन की भी होता है अचक्षु दर्शन की भी। तो दर्शन यानी सामान्य अवलोकन। अब जो चक्षु इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान होता है उससे पहले होने वाला जो सामान्य अवलोकन है उसको कहते हैं चक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन यानी चक्षु दर्शनावरण का हम शोक्षण करता है क्योंकि इंद्रियों द्वारा चक्षु इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान चलेगा उसके पहले वाला जो दर्शन है उसमें भी क्योंकि उसमें सर्वघाती देशघाती उसमें हिंसा निंदा चलेगी। तो ऐसे ये जो वहां स्पर्धक है दोनों प्रकार के चक्षु दर्शनावरण तो चक्षु दर्शन किस किस को होता है कौन से जीवों को होगा एक एक जीव से पंचे ले सकते जीवों में चक्षु दर्शन किसमें पाया जाएगा चौथी और पंचे क्योंकि उनको चक्षु है और अचक्षु दर्शन किसमें पाया जाएगा
अब जो अंतराय कर्म है
उसमें कोई भी सर्वलादी प्रकृति नहीं थी। पांचवी जो अंतराय है वे कैसे देश घाती थे, तो ये हमने घाती कर्मों की लिस्ट देखी। हमने तो केवल ज्ञान आनंद पर बताया, वैसे ये जो सभी सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति में सर्वघाती में तीनों ही सर्वघाती स्कंधक होते हैं और देशघाती प्रकृति होने स्पर्धक दोनों प्रकार के होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। ये भी कोई कंफ्यूजन है ना, स्पर्धक और प्रकृति में आता है क्योंकि ये नए शब्द है, पहली बार सुनते हैं तो उसका कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए बार बार दोहरा है उसको, आप फिर से दोबारा पढ़ना तो ये सारी बातें ख्याल में आ जाए। अभी हम इसमें जो देखते हैं, हमने वो पर्याय ज्ञान की बात की थी, तो पर्याय ज्ञान जो है सबसे ही ज्ञान का प्रकार, तो उतना ज्ञान तो जीवों को प्रकट रहेगा ही, यानी पर्याय ज्ञान ही छूट गया जिसका उसके ऊपर भी आवरण आया ऐसा कभी नहीं होगा, तो उसको कहते हैं पर्याय ज्ञान जो है वो निरावरण ज्ञान। उसका आवरण का कर्म तो है, कर्म का सद्भाव है, परंतु उसका कभी भी उदय रहेगा नहीं, उतना तो ज्ञान प्रकट होगा। तो हमारा प्रश्न है ये पर्याय ज्ञान किसको होता है, तो निगोद जीवों को होता है, हमने जो नहीं देखा था, तो क्या हमें होता है या नहीं होता, ये यहाँ प्रश्न है। कि क्या तुम्हें पर पर्याय ज्ञान है, क्या प्रश्न पूछा था, तो कोई कहेगा कि हमें क्या निगोद समझ रखा है, क्योंकि हमने शास्त्र में सुना ना कि निगोद जीवों को पर्याय ज्ञान है, तो यदि हमको पूछा कि नहीं आपको पर्याय ज्ञान है, हमें लगता है हम क्या निगोद है, हम ज्ञान वाले जीव, हम तो संधि पंचम के पर्याप्त तो मनुष्य जीव है, हमारा ज्ञान तो उनसे अनंत गुणा बराबर, पर्याय ज्ञान से अनंत गुणा है बात सही है, परंतु इसका प्रश्न उत्तर जो है वो दूसरे प्रश्नों के द्वारा यहाँ दे रहे। मुझे बताओ किसी करोड़पति के पास एक रुपया है या नहीं, जिसके पास करोड़ रुपए है क्या उसके पास एक रुपया है कि नहीं, तो है, तो जिसका अधिक ज्ञान है तो ये सभी भी वेद में गर्भित है, वो सब ज्ञान उसके पास है। यदि तुम्हारे पास पर्याय ज्ञान नहीं मानोगी तो तुम्हारे पर्याय ज्ञान का उदय मानना पड़ेगा, यदि कोई कहेगा हमको पर्याय ज्ञान नहीं तो क्या मानना पड़ेगा, पर्याय ज्ञान का उदय है, क्योंकि जो जो ज्ञान नहीं है उसका वहाँ आवरण का उदय रहता है। समय ज्ञान चंद्रिका में पंडित प्रणव जी लिखते हैं, ये ज्ञान मार्गना में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पर्याय ज्ञान बिना कोई जीव नहीं है, केवल ज्ञानियों के भी पर्याय ज्ञान संभव था, और महाज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित जाना, ये जो इंटरव्यूअर ने लिखा है वो पंडित जी को ही यहाँ कोट किया है। केवली भगवान के क्षयोक्षम भी ज्ञान नहीं है, क्षयोक्षम भी नहीं घटेगा, वो देशवासी घटेगा, जब जिस जीव को केवल ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं, क्षायिक ज्ञान, तो उसमें कौन से कर्मों का क्षय हुआ है, अकेले केवल ज्ञान का क्षय होने से केवल ज्ञान होगा क्या, चारों सभी केवल ज्ञान रोकता तो एकमात्र केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के उदय, केवल ज्ञानावरण के उदय में मति शुद्ध ज्ञान तो अपना चालू है, क्योंकि हमें अभी केवल ज्ञानावरण का उदय तो है, फिर भी मति शुद्ध ज्ञान होने में कोई बात नहीं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण का उदय होता है और अकेले केवल ज्ञानावरण का क्षय होने से केवल ज्ञान हो जाए, तो ऐसा नहीं, यानी जिसको हम शायद ज्ञान कहते हैं ना तो उसमें सभी ज्ञानावरण का क्षय होना, ये जो सर्वघाती प्रकृति है केवल ज्ञानावरण और देशघाती प्रकृति है मति शुद्ध अवधि के मन पर ज्ञानावरण वाले, उन सभी के क्षय से केवल ज्ञान उत्पन्न, ये ख्याल है, क्षयोक्षम से तो हम अकेला क्षयोक्षम घटित करते हैं, परंतु जब हम क्षायिक भाव घटित करेंगे, क्षायिक ज्ञान घटित करेंगे, तो उसमें अभी हम ज्ञान का क्षायिक ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञानावरण की जितनी सारी प्रकृति है उन सबका क्षय होगा तो ही क्षायिक ज्ञान करते हैं। जब हम क्षायिक दर्शन की बात करते हैं तो ये चक्षु अचक्षु ये तो क्षयोक्षमिक भाव है, परंतु शायद दर्शन जिसको कहते हैं तो उसमें जितने हमने सारे नौ के नौ प्रकृतियां देखी है उन सभी का अभाव यानी अभाव निश्चय एक बात अभाव शब्द द्रव्य नियोग में आता है परंतु कर्मानियोग तो अभाव में तीन बातें बताते किसी का ऑप्शन भी हो ना? या निश्चय भी हो या अक्षोक्षम भी हो हृदय का अभाव उसको हम अभाव में देते ये तो द्रव्य नियोग की स्कूल बातें होती कर्मानियोग में तो सत्ता में पड़ा है तो हम कहेंगे वो है हम कहेंगे नहीं भगवान के हम बता रहे भगवान ने जो बताया ना वो अभी हम बता रहे कि हमारी अपनी बात नहीं किसी के आचार्य ने भी किसी ने स्वीकार नहीं किया कि हम बता रहे तो क्या कहते हैं ये भगवान ने जो बताया है वो हम आपको बता रहे क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष ज्ञानी की यानी केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है कर्मों की ये जो इतनी सूक्ष्म बात है अवधि ज्ञानी जान सकते हैं कोई बहुत विशिष्ट अवधि ज्ञानी है एक कर्म के एक परमाणु तक को भी जान सकते परंतु ये मूल कथन किसका है सर्वज्ञ भगवान जिन्होंने ये सारी बातें प्रत्यक्ष जानकर बताई तो उसमें ये जो क्षण की और शायद की हम चर्चा कर रहे थे ये थोड़ा अपना विषय है नहीं परंतु इस बहाने भी उसकी भी चर्चा करेंगे क्षण तो हमारे ख्याल में आ गया उसकी बड़ी भाषा याद है कि भूल गए कौन कहेगा आप बता मेरी मैं क्यों वाली हाँ बता पुस्तक में पढ़कर बता गुजराती में पढ़ो चलेगा एक एक वो पढ़ी अभियान महिला आप पढ़ना हाँ वही नहीं देश घाटी का बहुत अच्छा कर्मों की जो तीन अवस्था तीन रूप अवस्था है तीन बातें देखो सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक तो सर्वघाती स्पर्धक का वर्तमान में उदय हो जा रहा है तो पूरा बात हो जाए तो क्षोक्षम की जो परिभाषा है उसमें क्या है कि वर्तमान जो निषेध है उसमें सर्वघाती का उदय नहीं होगा भले वहां वो पड़े हैं परमाणु परंतु उदय उनका ही होगा तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय एक बात अभी वो अंदर भविष्य में पड़े हैं तो पड़े रहेंगे वो उस रूप से उदय में नहीं आएंगे है वहीं पर बने रहेंगे तो उसको कहते हैं भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था सूक्ष्म है वहीं पर बने रहेंगे तो उदय किसका होगा तो देशघाती स्पर्धकों का उदय वर्तमान काल में जो देशवासी स्पर्धक है उनका उदय इसको कहते हैं क्षयोक्षम ये हमने मति ज्ञान पर भी बताया कि मति ज्ञान का क्षयोक्षम होता है और जीव को यहाँ मति ज्ञान प्रकट है इस पर हमने अभी सुबह में ही बताया ख्याल है याद है कि भूल गए ये फिर से पढ़ते तो अपने ख्याल के लिए स्पर्धक क्या है प्रकृति क्या है इसका थोड़ा स्टार्टिंग कंफ्यूजन होगा कोई बात नहीं बार बार पढ़ेंगे तो उसका आपके ध्यान में आने लगता है थोड़ा थोड़ा हमें तो चार चार पांच पांच वर्ष तक इसका पता ही नहीं प्रकृति क्या है स्पर्धक क्या है क्या बातें हो रही है कुछ पता नहीं चलता पढ़ते थे पढ़ाते थे सब चल जाता तो अभी ये तो थोड़ा दिमाग में बैठने लगा कि ये स्पर्धक क्या है तो उसमें इतनी वर्ग वर्गना ये सारी बातें होती है और ये तो अनुभव तो बताने वाले होते हैं ऐसी जो बातें तो ये प्रकृति और स्पर्धक स्पर्धक तो अनुभव युक्त परमाणु के समूह को कहते हैं और प्रकृति की जो कुछ ग्यारह वर्ग की जो कुछ देश राती हो या सर्वराती उसको तो ये जो बातें हैं फिर से दोबारा आप पढ़ेंगे तो ये बात आपको ख्याल में आ जाएगी भले अभी हम रिपीट नहीं कर सकते हैं बोल नहीं सकते हैं फिर भी ये समझना मूल चीज है फिर दोबारा पढ़ेंगे तो ख्याल में आता है या नहीं है ये मूल देखना है तो यहाँ नीचे के पैराग्राफ में हिंदी टू पेज पर फिफ्टी पेज पर स्टार्टिंग में देखो यहाँ एक बात समझ लो कि केवल ज्ञान आरंभ प्रकृति सर्वघाती है परंतु वह ज्ञान का संपूर्ण बात नहीं करते
अभी हमने देखा ना अपने अपने प्रतिपक्ष का नाश कर, मात्र अपने प्रतिपक्षी केवल ज्ञान का सर्वदा नाश करती है, उसके हृदय में तो अन्य चार ज्ञान का क्षोभ चालू रहता है। केवल ज्ञान का हृदय चल रहा है और हम देखते हैं किसी जीव को मुनियों को मति शुद्ध और मन पर सभी चारों ही ज्ञान पकड़ रहे हैं, तो उसका वहां क्षोभ चल रहा है। उसी प्रकार ज्ञान बुद्धि आदि पांच दर्शनार्थ कर्म सर्वभाषी है, परंतु वे दर्शन का संपूर्ण घात नहीं करते, यानी नींद की निद्रा की अवस्था में भी दर्शन गुण का कार्य तो चलता ही रहता है। उसने जागृत अवस्था का नाश किया है, दर्शन गुण का या दर्शन के कार्य का नाश नहीं होता। उनका प्रतिपक्षी जो जागृत अवस्था उसका पूर्ण घात करके उनके हृदय में अन्य चार दर्शनार्थों का उदय या क्षोभ यथा योग्य चलता रहता है। दोनों नाशकों के लिए, क्योंकि केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण का तो उदय चलता है और अन्य जो है चक्षु चक्षु उदय दर्शनावरण तो उसका यथा योग्य क्षोभ चलता है। अर्थात केवल दर्शनावरण सर्वभाषी है, उसका उदय बारहवें गुण स्थान के अंत तक निरंतर रहता है और उसके निमित्त से केवल दर्शन का पूर्ण घात होता है, परंतु अन्य चक्षु चक्षु दर्शन या अवधि दर्शन होते रहते। ये व्याख्यान में अब जागृत अवस्था में चार दर्शनावरण का उदय रहता है। उदय जब लिखा है दोनों उदय या क्षोभ जो यथा योग्य वो समझना, अभी समझाने के लिए। अब निद्रा अवस्था में कितना है, चार दर्शनावरण के साथ एक निद्रा, कोई भी एक नहीं, एट ए टाइम पांचों निद्रा का उदय नहीं होगा, दो निद्रा कर्म का एक साथ उदय हो ऐसा नहीं होगा, एक काल में एक कोई निद्रा का उदय होगा। अभी पांच मिनट के बाद दूसरे निद्रा कर्म का उदय है, पहले तो तरल निद्रा थी, अभी गाढ़ी निद्रा हो गई, हो सकता है ना, परंतु एक समय में तो किसी एक निद्रा का उदय होगा, इसलिए निद्रा अवस्था में पांच का वहां उदय। अभी कर्मों का क्षय होकर अगला पैराग्राफ, कर्मों का क्षय होकर क्षय भाव प्रकटता है। ये जो पांच भाव हमने देखे याद है, पांच भाव जीव के असाधारण भाव पांच भाव हमने देखे हैं, हमने पहले पढ़े थे औषमिक क्षायोक्षमिक पारिणामिक तो जीव का स्वभाव। अब हमने अभी जो क्षयोक्षम क्या होता है उसको देखा, क्षयोक्षमिक भाव देखा ना, तो अभी हमने कौन सा क्षयोक्षम भाव देखा, हमने ज्ञानावरण पर बताया, यानी क्षयोक्षम ज्ञान जिसको कहते हैं, तो मति ज्ञान ये जीव का क्षयोक्षमिक भाव है। कर्म में क्षयोक्षम हुआ, कर्म में तो क्षयोक्षम हुआ और जीव में क्या हुआ, विशिष्ट ज्ञान प्रकट है, उसको हमने कर्म की तरफ से उसका नाम क्या दिया, क्षयोक्षमिक भाव। तो जीव में कौन कौन से क्षयोक्षमिक भाव हो गए, ज्ञान के, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरीय ज्ञान, इनको क्या कहेंगे हम, क्षयोक्षम ज्ञान। और जो तीन कुप ज्ञान है वो कौन से हो गए, सुमति कुशुद्ध और वे भी क्षोभम भाव है। तो ये जो चार और तीन सात ज्ञान जो है वो सभी क्या है, क्षोभम है, क्षोभम ज्ञान है, यानी जीव के क्षोभम भाव। क्षोभम भाव का उपयोग कितने मालूम है, किसी अठारह में से सात तो अभी हमने देखे। अब दर्शनावरण की बात करो, तो दर्शनावरण की जो देशघाती है, सर्वघाती में तो उदय औदय भाव लगे, देशघाती में एक क्षोभमिक भाव घटित होता है। तो कौन कौन से गति, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये क्या हो गए, क्षोभम ज्ञान, तीन दर्शन, सात ज्ञान और तीन दर्शन, तो दस क्षोभमिक भाव तो यहीं पर घटित होते। अब जो हमने दान लाभ हो गए अंतराय कर्म के देखे थे, तो वहां वो तो सब देशघाती ही है, तो उसका भी क्षोभम चलता रहता है, तो ये पांच हो गए क्षोभमिक, दान लाभ भोग भी, तो दस और पांच तो पंद्रह, तो क्षोभमिक भाव यहाँ घटित हो गए। अब रहे तीन, उसमें क्षोभम समित्व, क्षोभम चारित्र और संयमार्थ, यानी थोड़ी विरति थोड़ी अविरति, पांचवें गुण स्थान हमारे पर जो होती है। तो क्षोभम समित्व में कैसा घटित करना, तो सम्यक प्रकृति को हमने देशघाती प्रकृति देखा है, और मिथ्या का समय मिथ्या तो सर्वभाषिक प्रकृति देखा था, तो भी उदय होगा देशवंत का, यानी सम्यक प्रकृति का उदय होगा, और जो सर्वभाषी मिथ्या का सम्यक इच्छा है वो सत्ता में बने रहे। उदय रूप जब जब होंगे तो सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आएंगे। उच्चम समय की बात आगे हम उच्चम समय के बाद उसको बताएंगे तभी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, परंतु यहाँ सर्वभाषी जो प्रकृति है ना, मिथ्या का समय मिथ्या वो तो भविष्य काल में बनी रहेगी, और वर्तमान काल में जब हृदय आने योग्य हो जाएगी, उसकी स्थिति पूरी होगी, तो सम्यक प्रकृति रूप होकर देशवादी होकर हृदय में आएगी। तो इसके वहां क्षोषण समय को गठित होगा। क्षोषण चारित्र नहीं है, वो संचलन है, वो देशवादी है। इसमें दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। वहां भी देशघाती का उदय होगा और सर्वघाती का उदय नहीं होगा, तो एक क्षोषण चारित्र गठित होगा। और वहां संयम आते हैं, थोड़ा संयम है थोड़ा असंयम है, उस पर भी एक शोषण भाव बढ़ी। तो इस तरह हमने कितने भाव एक शोषण के, वो किस पर घटित हुए हैं, देशघाती से। याद करना है शोषण भाव आघाती कर्म में घटित होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। और ये जो केवल दर्शनावरण केवल ज्ञान आवरण उसमें भी घटित नहीं होगी, क्योंकि उसमें एक शोषण होता ही सर्वघाती का शोषण होता ही नहीं। तब शोषण किसमें घटित हुआ नहीं, क्यों घटित हुआ, थोड़ा क्षय थोड़ा उपशम वो किसका होता है, सर्वघाती। सर्वघाती का उदय न होना सर्वक है, देशघाती प्रकृतियों में घटित होता है, पर स्पर्धक कैसे है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता, सर्वघाती स्पर्धक भविष्य में पड़े रहते और देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। इसलिए वहां क्षोषण क्या है, पहली बार सुनते हैं तो ऐसा कंफ्यूजन बहुत, टेंशन लेने की कोई जरूरत, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस बहाने हमें क्षोषण भाव बने, अब उपशम भाव किस कर्म पर घटित होगा, किसमें उसमें ऐसा घटित करना, थोड़ी विरति है थोड़ी अविरति है, उस हिसाब से वहां घटित। अब हम अविरति के हमने 12 प्रकार है वगैरह उसकी चर्चा हमने यहाँ नहीं की, तो मालूम है कौन से अविरति, अविरति कौन से होते 12 प्रकार, 6 प्रकार का विरत कर देगा, तो वो जो चीज नहीं होती वो अविरति कहेंगे। विरत या संयम जो है 12 प्रकार का, 6 प्रकार का तो प्राणी संयम और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय मन संबंधी जो संयम है उसको कहते हैं इंद्रिय संयम। अब ये 6 और 6 12 हो, अब ये जो 12 हो गए पूरा ही संयम होगा तो हम उसको संयम ही कहेंगे, सकल संयम ही कहेंगे। अब चौथे गुणस्थान तक क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पूर्ण रूप से असंयमी होते, और संयम यानी संयम बिल्कुल नहीं है, 5 इंद्रिय और मन से हटे नहीं है उसमें है अभी, क्योंकि भले समय दृष्टि हो तो भी हो अविरत समय दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले की भी बात हो तो उसको असंयम कहते, असंयम समय दृष्टि नाम है अविरत समय दृष्टि, तो वहां तो उसको विरति कुछ है ही नहीं है, भले वो हिंसा नहीं कर रहा हो तो भी जब तक चौथा गुणस्थान का चालू है तब तक उसको अविरति ही कहे, अविरत समय दृष्टि कहे। तो चौथे में तो ये 12 में से किसी का भी त्याग है नहीं, पांचवे में जिसको विरता विरत कहते थोड़ा विरत और थोड़ा विरत, तो 12 में से कितनी विरति हटी उसकी और कितनी चालू है मालूम ही किसी को, 12 में से कितना हटा और कितना बाकी है, पांच की हाँ देखो षटकाय हिंसा कभी कही, षटकाय कौन से होते हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस, त्रस यानी 2 इंच से 5 इंच और स्थावर यानी किसी का जैसा है क्या वाय का वंश, तो 5 स्थावर की हिंसा से वो भी नहीं चला है, 1 त्रस हिंसा का ही त्यागी हुआ पांच गुणस्थान का, और इंद्रिय संयम तो उसको है ही नहीं है यानी उससे भी अभी हटना नहीं, तो 12 अविरति की उसमें से 1 अविरति निकल गई, उस संबंधी विरति है व्रत है उस संबंधी संयम है, परंतु भी 11 प्रकार से वो अविरत है, 1 प्रकार से विरत है और 11 प्रकार से अविरत है। औक्षमिक भाव किस पर घटित हो गए? ममात्र मम्मी के। देखो औक्षमिक भाव में किस पर घटा है? अब औक्षमिक भाव घटा है किस पर घटित हो गए? मम्मी पर। अब दर्शन मम्मी के जो उपशम होता है, उपशम में भी उसकी उदय नहीं होता है, वो अंदर दबे सत्ता में तो पड़े हैं, परंतु उदय का नहीं होना, सत्ता में ही पड़े रहना, उसको उपशम के। तो दर्शन मम्मी का उपशम होगा तो औक्षमिक सम्यक पर प्रकट, और चारित्र मम्मी का उपशम होगा पूरा का पूरा तब औक्षमिक चारित्र होगा। तो जो ग्यारहवें व्यवस्था में औक्षमिक तो इसलिए ये औक्षमिक भाव मोहनी पर प्रकट। अब क्षाई भाव कितने हैं याद है किसी? तो देखो यहाँ पर ये जो टेबल है ये देखो, अभी क्षाई भाव बताने हैं ना, तो ये मूल प्रकृति घात यानी घाती कर्मों पर ही लोग क्षाई भाव में बने, आघाती कर्मों में कोई क्षाई भाव नहीं करते। तो नौ के नौ क्षाई भाव घाती कर्मों पर बने बराबर। अब घाती कर्म है कितने? चार। तो उसमें तो एक कंडीशन एक क्षाई भाव है, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति सबका टोटल क्षय होना चाहिए, सत्ता में से पूर्ण विनाश होना चाहिए, तभी जाके क्षाई भाव प्रकट। तो ज्ञान आवरण की पांच प्रकृति है, सर्वघाती एक और देशघाती चार, पांचों का जब क्षय होगा तो क्षाई ज्ञान प्रकट होगा। दर्शनावरण की नौ प्रकृति है, देशघाती सर्वघाती मिलकर नौ है, तो वो नौ के नौ का क्षय होगा तो क्षाई दर्शन प्रकट होगा। अब मोहनी में दो है, कौन कौन से? दर्शन और चार के संबंध है, तो क्षाई श्रद्धा यानी क्षाई दर्शन किसको कहते हैं? तो वो प्रकट होगा क्षाई समय पे जिसको हम कहते। तो दर्शन होने का संपूर्ण नाश, उसमें किस किस को लेना? विद्यार्थ समय विद्यार्थ समय प्रकृति तीनों का ही जब क्षय होगा तब क्षाई समय को प्रकट होगा। चारित्र होनी है, ये जो सभी हमने जो 25 कषाय देखी थी कषाय नौ कषाय, इनका संपूर्ण क्षय होगा तो क्षायिक समय को प्रकट होगा। क्षायिक चारित्र चारित्र प्रकट होगा, ये कितने हुए? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक समय और क्षायिक चारित्र। अब पांच रहेगी अंतराय, उसमें जो सर्वघाती है नहीं, जो कुछ है देशघाती पांचों ही, उन सबका जब क्षय होगा तो वो पांच क्षाई भाव प्रकट होगा। क्षाई दान, क्षाई लाभ, क्षाई भोग, क्षाई भोग, क्षाई वी, ये इस तरह से क्षाई ज्ञान, क्षाई दर्शन, क्षाई सम्यक, क्षाई चारित्र और क्षाई दान लाभ भोग वी, इस तरह से ये जो सभी क्षाई भाव है वो घाती कर्मों के क्षय से होता है। देशघाती पर औक्षमिक भाव हमने मोहनी में लगाया, दर्शन मोहनी और क्षाई कर्म क्षाई कर्म पूरे की घाती कर्मों का जब क्षय होता है तब ये जो नौ के नौ क्षाई भाव प्रकट होता है। औदयिक भाव की चर्चा अभी यहाँ नहीं करेंगे, उसमें तो जब जब यहाँ भी दोनों प्रकट मुख्य रूप से तो घाती पर तो घटित होते ही होते हैं, परंतु ये जो नाम कर्म भी जो कुछ है उसमें गति भाव वगैरह उसमें भी घटित होता है औदयिक, क्योंकि वो अपना विषय है नहीं, फिर भी क्षोक्षम गणित क्या था इसलिए बाकी भावों की भी यहाँ हमने चर्चा की। अब थोड़ा पहले से हम देखते हैं यानी इसमें इतना ही समझना है कि जब जब क्षाई भाव प्रकट होगा तो सर्वघाती हो या देशघाती हो सभी प्रकृतियों का क्षय होगा, वही क्षाई भाव प्रकट होगा, भले वो ज्ञान है दर्शन है जो कुछ समय है जो कुछ है। और क्षोक्षम देश राशि प्रकृति, इसमें 53 पेज है हिंदी में, कर्मों का क्षय होकर क्षाई भाव प्रकटता है, और सौक्षम होकर सावक्षम ही भाव प्रकट करना। लेकिन जीव का भाव तो जीव का अपना है, परंतु सामने कर्म की अवस्था जैसी है वैसे इसके भाव को भी नाम दिया जाता है। ज्ञान तो ज्ञान है, कर्म के सौक्षम के कारण जीव को ज्ञान नहीं हो रहा, ये बात ख्याल में ले। जब बादल आते हैं और सूरज का प्रकाश थोड़ा मंद हो जाता है, वो मंद जो प्रकाश है, प्रकाश जो है वो बादलों के कारण नहीं, प्रकाश है वो सूर्य का, उसमें जो मंदता आई वो बादलों के कारण, परंतु जो है वो तो सूर्य का है। वैसे हमारा जो ज्ञान प्रकट है वो हमारा अपना स्वभाव है, पर हमारा स्वभाव तो केवल दर्शन केवल ज्ञान का है, परंतु उसमें अभी जो हीनता है उसमें हम निमित्त रूप से कर्म की तरफ गए। होता तो जीव का अपने में अपने स्वयं की योग्यता, परंतु अभी यहाँ कर्मों का निमित्त पाकर सामने कर्म उपस्थित है, इसलिए जीव के ज्ञान को भी हम कर्मों की तरफ से नाम देते हैं कि उसका क्षयक्षणिक ज्ञान है ना। जब कर्मों का क्षय विद्यमान है तो जीव ने अपने स्वयं की योग्यता से केवल ज्ञान प्रकट किया है, तो हमको कहेंगे ये उसका क्षय ज्ञान। कर्मों के क्षय ने केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं कराया, केवल ज्ञान तो जीव का अपना भाव है, परंतु उस समय सामने कर्मों में क्षय पाया जाता है, ज्ञानावरण का क्षय पाया जाता है, उनकी तरफ से जीव के भाव को क्या नाम दिया जाता है, ज्ञान को क्षय ज्ञान है ना। तो जीव का भाव और कर्म की अवस्था दोनों साथ साथ चलते हैं। हम दर्पण के सामने जाके खड़े होते हैं तो वहाँ प्रतिबिंब दिखता है, तो प्रतिबिंब पहले आए कि हम पहले गए, एक साथ है, और वो दर्पण की जो अवस्था है वो अपना है ना प्रतिबिंब, वो दर्पण की अवस्था दर्पण के उसके अपने कारण हुई है, और हमने ये हमारा प्रतिबिंब है ऐसा लगता है, ये हमारी अवस्था है ना। तो ये मेरी अवस्था अपनी अवस्था तो अपने में है, यहाँ तो शरीर की अवस्था की बात करें उसको जो हम अपने मान रहे हैं, तो यहाँ तो हम खड़े हैं और सामने दर्पण में कुछ विशिष्ट अपना प्रतिबिंब वहाँ पड़ा है, तो जो प्रतिबिंब वहां जो दिख रहा है वो दर्पण की अवस्था है और यहाँ जो है वो शरीर की अवस्था है। तो ये दोनों अवस्थाएं एक साथ एक दो द्रव्य में अपनी अपनी अवस्था अपने अपने कारण में विद्यमान रहती है, तो उसमें जो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है उनका समय एक, कार्य दो द्रव्यों में भिन्न भिन्न, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है। यदि मेरे कारण वहां प्रतिबिंब है तो सामने दीवार में भी प्रतिबिंब पड़ना चाहिए, तो वो तो दिखता नहीं, तो ये आईने में ही क्यों दर्पण में ही क्यों प्रतिबिंब दिखता है, क्योंकि वो उसकी स्वयं की योग्यता से विस्तृत परिणाम होता है। वैसे ही अब यहाँ जीव की जो जो अवस्था है वो जीव के अपने स्वयं की योग्यता से होती है, उसी समय कर्म में भी वैसी वैसी अवस्था पाई जाती है, दोनों का काल एक, गर्भ का उदय हुआ इसलिए मुझे क्रोध आया, कर्म का ऐसा डिग्री टू डिग्री होते रहते हैं, तो ये बहुत ऐसे शब्द आते हैं कि ये डिग्री टू डिग्री क्या होता है, और ये इतना कर्म का उदय आया इसलिए हम लोग को भाव करना पड़ा ना, ऐसी बात नहीं है। जीव जब यहाँ क्रोध रूप बनता है तो सामने वहां क्रोध कर्म का उदय भी है, कर्म का उदय हुआ इसलिए मुझे वैसा करना पड़े तो हम पराधीन हो गए, कर्म तो करके भगवान की छोड़कर कर्म की पूजा करने का कर्म ही हमारा सब कुछ हो गया। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये जब जीव में विशिष्ट भाव होते हैं कर्म में विशिष्ट अवस्था होती है, दोनों के नाम एक हों, एक समय में होते ना दोनों, तो कहेंगे कि जीव ने कर्म में ऐसा किया है, कर्म ने जीव को ऐसा किया है, कर्म का उदय आया इसलिए जीव को ऐसा किया, या अरिंद भगवान ने कर्मों का नाश किया, कथन ही तो ऐसी होगी, निमित्त से कथन किया जाएगा, परंतु कार्य तो अपने अपने द्रव्य में ही होगा, ये बात मूल में मूल समझनी है। तो यहाँ जब हम देख रहे थे कर्मों का क्षय होकर क्षायिक भाव प्रकटता है और क्षोक्षम होकर शावक्षमी भाव प्रकट होता है, ये तो निमित्त की भाषा है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं समझने की कुछ नहीं, अरे हमारा शावक्षम नहीं हुआ, हमारा क्षय नहीं हुआ तो हम क्या करें, हम अटक गए इसलिए हमारा क्षय ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, तो ऐसी बात है। क्षय ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के ज्ञानावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है, ये अभी हमने क्षय भाव की चर्चा की। शायद दर्शन अर्थात केवल दर्शन सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के दर्शनावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। शायद सम्यक सर्वधा के ऐसे निख्यात और समीमित है और देशरा के भी जो सम्यक होती इन दोनों ही प्रकार के दर्शन होने का क्षय होने पर प्रकट होता है और क्षायिक चारित्र भी दोनों ही प्रकार के चारित्र होने पर उसी का क्षय होने पर होता है। यानी जब ये 25 सारे जो कषाय कषाय सब उनका क्षय हो जाएगा अनंतानुबंधी आदि 16 और 9 कषाय सबका क्षय होगा तो क्षायिक चारित्र प्रकट होगा। अंतराय कर्म की मात्र देशवासी प्रसूति होती है इसलिए उनके क्षय से क्षायिक दान क्षायिक लाभ क्षायिक भोग क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य प्रकट होते हैं। ये तो क्षायिक भाव की बात कर रहे हैं। यानी सर्वभारतीयों या देशवासियों जितनी कुछ प्रकृतियां है इस कर्म की उसका क्षय होगा तो क्षायिक भाव प्रकट होगा। परंतु क्षोक्षम भाव तो मात्र देशवासी के कर्मों के क्षोक्षम होने पर ही होता है, सर्वघाती प्रकृतियों में क्षोक्षम नहीं होता। केवल ज्ञानावरण का कभी क्षोक्षम नहीं होता, निद्रा कर्म में कभी क्षोक्षम नहीं होता, केवल दर्शनावरण में क्षोक्षम नहीं होता, मिथ्यात्व का कभी क्षोक्षम नहीं होता है ना। यानी क्षोक्षम सम्यक तो होता है परंतु वहां सम्यक प्रकृति का उदय है इसलिए वो मिथ्यात्व का क्षोक्षम नहीं गया। यानी सर्वघाती प्रकृतियों पर क्षोक्षम भाव कोई भी घटित होगा ही नहीं। उसी प्रकार अघाती कर्मों में भी क्षोक्षम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्षोक्षम तो देशवासी प्रकृतियों पर घटित होगा। ऊपर कह आए उस प्रकार शाही भाव तो 9 ही है और अब देशवासी पर घटाएंगे तो 18 क्षोक्षमी भाव तुम्हारे ख्याल में सहज नीति से आएंगे। ये अभी हमने घटाई थी। क्षोक्षमी भाव में उदय तो देशघाती का होगा, उसे समझने के लिए सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों के नाम देखते हैं। ये अभी हमने देखे थे, ये टेबल यहाँ देखा था अगले पेज पर जो यहाँ 51 पेज पर है गुजराती में और 54 में हिंदी में। उसके पश्चात अब देशघाती की तरफ देखकर क्षोक्षमी भाव याद करो जो अभी हमने घटाए थे ना, जो देशघाती प्रकृतियां यहाँ राइट साइड में लिखी है उस पर ये सभी क्षोक्षमी भाव घटित होते हैं। मतिशुद्ध आदि 4 सम्यक ज्ञान और 3 कूद ज्ञान, ये जो 7 ज्ञान है क्षोक्षमी ज्ञान वो इस पर घटित होते हैं। 3 दर्शन चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, क्षोक्षम सम्यक चराग चारित्र और संयमा संयम और दानादि 5, ये सब है क्षोक्षम। इस तरह विचार करो कि जो सहज ध्यान में आता है याद रह जाता है, करना नहीं पड़ता। अब अन्य कुछ पारिभाषिक शब्द याद हो रहे देखकर हमारा जो विषय है ना 5 गति का वो तो अभी प्रारंभ ही नहीं किया। इसके पहले ये सब हाँ, क्योंकि क्या है विशिष्ट शब्दों के साथ हम परिचित नहीं है और बार बार उनके नाम आने वाले स्पर्धक क्या होते हैं, उनमें अनुभव क्या कम होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो फिर बाद में जाकर क्या चल रहा है कुछ हमारे समझ नहीं आता। इसलिए स्पर्धक और प्रकृति पर इतना सारा जोर देकर समझाना। अब यहाँ और कुछ शब्द आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ ये जो अपकर्षण और उत्कर्षण लिखा उसकी बात करें, देखो जब जीव कोई ना कोई उसके परिणाम चलते हैं तो उन परिणामों के कारण क्या होता है कि नया बंध तो होता ही है परंतु पूर्व में जो बंधा है सत्ता में जो पड़े हैं कर्म उनमें भी बहुत सारा परिवर्तन होता है। यानी हम अकेले कर्म बांधते इतना ही नहीं, पूर्व में बंधे हुए कर्मों में भी बहुत वेरिएशन है। पहले बहुत सत्ता स्थिति बांधी थी वो घट भी सकती है, बहुत अनुभव बांधा था वो भी घट सकता है या उल्टा भी हो सकता है कि अनुभव कम बांधा था मान लो अपशिष्ट का कम बांधा था और ऐसे उल्टे परिणाम हुए कि वो अनुभव बढ़ गया। अभी वर्तमान में तो पाप कर्म करने से पाप तो बनता ही है, तीव्र अनुभव तो बनता ही है, पर पूर्व में कभी थोड़ा पाप किया था उसका भी अनुभव बढ़ जाता है, उल्टा भी हो सकता है। अभी के पुण्य परिणाम के कारण कभी कभी तो पाप पूर्व बांधा हुआ संक्रमण होकर ट्रांसफर होकर असाकार वो साकार भी हो सकता है और जो कोई पाप प्रकृतियां है उसका अनुभव हीन भी होता है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभव बढ़ता रहता है। नया तो बदला होगा ही होगा परंतु जो प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी वहां सत्ता में पड़े हैं उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते रहे और ये जीव के भावों पर निर्भर है। यदि ऐसा ना हो कि जैसा उदय आए वैसा ही भाव करना पड़े तो उसमें से छूटने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो जीव स्वतंत्र है अपने भाव करने में और उसके जैसे भाव होते हैं या जैसे तत्व विचार होते हैं या जैसे जैसे शास्त्र साधन होता है तो उसके कारण कर्मों में क्या क्या बातें बनती है और ये सहज रीति से कैसी बनती है, ये सब चर्चा इसमें आ जाए कि वो कर्म का उदय ऐसा जैसे कोई डरने की बात ही नहीं। कर्म के उदय के कारण अपने भाव नहीं होते, अपने भाव के कारण कर्म को उदय में आना फिर उतना ये तो होता है। ऐसे भाव निर्मल हो जाए, शुद्धि बढ़ जाए कि कर्म को उपशमित होना पड़े, है ना। तो ये उल्टा नहीं है। जीव हरेक दिन क्या समझे, जितना उदय आएगा उतना जीव को भाव करना पड़ेगा, तो ये तो पराधीन था। परंतु कौन से भाव करने वो जीव अपनी योग्यता से करता है तो उस काल में कर्म में भी वैसे वैसे क्या क्या वातावरण किसकी हम चर्चा करेंगे। स्थिति कभी बढ़ती है कभी कमी कम होती है, उसमें अनुभव किसमें बढ़ता है किसमें कम होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। अब यहाँ अपकर्षण और उत्कर्षण की बात करते हैं। देखो जीव के परिणामों के निमित्त से जब सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभव, स्थिति में हमने देखा ना अनेक कोड़ा कोड़ी साधन की स्थिति बांधी है वो उसको कहते स्थिति, और अनुभव यानी कैसा फल देगा कर्म तीव्र देगा या मंद देगा उसको कहते हैं अनुभव। जो हम स्पर्धकों में नाचते हैं, कौन से टाइप के स्पर्धक है, चार चार हमने भाग किए थे तो उसमें कितना अनुभव है, तो ये स्थिति और अनुभव जब घटते हैं तब उसको कहते हैं अपकर्षण। अप यानी कम, अपकर्षण यानी कम, क्या कम होता है स्थिति और अनुभव घटना उसको कहते हैं अपकर्षण। और जब बढ़ता है स्थिति भी बढ़ती है और अनुभव भी अधिक होता है तो उसे कहते हैं उत्कर्षण। तो अपकर्षण में स्थिति की हानि होती है उसे चार द्वारा समझाते हैं। ये जो यहाँ आड़ी लाइन बताए निषेक रचना जिसको हम कहते हैं, इतनी सारी आड़ी लाइन बताए तो उसमें जो अधिक स्थिति वाले परमाणु हैं वो अपनी जगह छोड़कर कुछ परमाणु नीचे आते, सभी के सभी नीचे कभी नीचे नहीं आते, कुछ परमाणु नीचे आते हैं। नीचे आने का अर्थ क्या है, उनकी स्थिति घटती है। अधिक स्थितिमान लोग के हजार साल बाद उदय में आते, अब उनकी स्थिति घट गई और सौ साल की हो गई या कोई एक अंतर्मुख में उदय आने योग्य हो गए तो उसमें स्थिति घट गई, तो ये स्थिति का घटना उसको कहते हैं अपकर्षण। तो ये हमने पहले नीचे रचना देखी थी, उसमें ऊपर के निषेकों के कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं इस प्रकार कथन किया जाता है। अभी हम बोर्ड पर देखते हैं जरा,
परमाणु कहीं भी हो हर एक निषेक में सर्वत्र उसके
तो जहां कहीं भी हो उनकी जो अनुमान है उनका लय की शक्ति घटती है तो उसको भी हम अपकर्षण कहते हैं, यानी इनकी स्थिति भी घटती है और उनका अनुमान भी घटता है तो उसको कहते हैं अपकर्षण हो, कर्मों का आकर्षण हो। कभी कभी क्या होता है इसका उत्कर्षण होता है, यानी इनकी स्थिति अभी उदय वाली को छोड़ना, आवली यानी असंख्यात कर्मों की एक आवली होती है और ऐसे सैकड़ों अंग का एक सेकंड होता है अपना सेकंड, तो आवली इतनी छोटी होती है उसमें भी असंख्यात समय होते हैं, तो असंख्यात समय के आवली कहते हैं। अब उदय के समय से लेकर जो एक आवली काल तक उदय आने योग्य जो विषय है उसमें से ऊपर कुछ नहीं जाए, वो कभी एक एक विषय फिर तो उदय नहीं आए, तो नीचे का एक एक विषय फिरता रहता है और आवली काल तक के निषेकों को हमेशा ही उदयावली के, ये शब्द आगे आने वाला है उदयावली, उदय के समय से लेकर एक आवली काल तक जो निषेक क्रम से उदय आने वाले हैं उसको कहते हैं उदयावली। एक निषेक यहाँ गिर गया तो ऊपर का एक निषेक उदयावली में आ जाए, तो उदयावली ने आवली काल तो हमेशा ही उसको हम उदयावली कहेंगे, तो उसके ऊपर भी बांधे जो निषेक है उसमें भी कुछ परमाणु उसकी स्थिति बढ़ सकती है तो बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं उत्कर्षण। वैसे यहाँ भी जो कम अनुमान है उसका अनुमान बढ़ेगा, बाद में जब हम देखेंगे पांच लब्धि के प्रकरण में उसमें तो अप्रशस्त कर्मों का अनुमान तो घटता जाएगा और प्रशस्त कर्मों का अनुमान बढ़ता जाएगा, ये बात आएगी क्रम जाएगी, परंतु ये शब्द भी हमको सीखने ना अपकर्षण क्या है और उत्कर्षण क्या है, स्थिति का घटना और अनुभव का घटना ये अपकर्षण कहलाता है और स्थिति और अनुभव का बढ़ना ये उत्कर्षण कहलाता है। अब इसकी अधिक चर्चा हम दोपहर में करेंगे। प्रश्न है क्या सुबह ही आया था और इसकी चर्चा भी की थी, फिर भी मैं प्रश्न करती हूँ। एक परमाणु को वर्ग कहते हैं, समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं और अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गणाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जिस वर्गणा में दुगुणे होते हैं, कृपया इसको स्पष्ट समझाने का प्रश्न करें, अर्थात वर्गणाओं के भी क्या वर्ग होते हैं और उनके अविभाग प्रतिच्छेद किस प्रकार होते हैं। ये सुबह बात की थी ना, जिसमें जिसमें समझित मान लो सौ अविभाग वाले जो परमाणु है उस प्रत्येक परमाणु को हम एक वर्ग कहेंगे। जिनमें जिनमें समान अभिभाव होते यहां पर हमने इकट्ठा दिखाया, परंतु जीव के प्रदेशों में जिन जिन परमाणुओं का समान अविभाग है उन सबको हम एक वर्गणा, जिन जिन परमाणुओं में वो 101 वाले वो सब एक वर्गणा, जिसमें जिसमें 101 कितना है उसको हम दूसरी वर्गणा के, ऐसा जरूरी नहीं कि वो इकट्ठे ये वर्गणा ऐसा है दूसरी वर्गणा ऐसा है, ऐसा नहीं, वो तो सभी असंख्यात प्रदेशों में कर्म फैले हुए हैं जहाँ कहीं भी स्थित हो, जिसके जिसके समान अविभाग है उसको हम एक वर्गणा के और जिसकी जिसके भी एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है उसको दूसरी वर्गणा कहेंगे। इस तरह से अविभाग प्रतिच्छेद एक से बढ़ते 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 जब द्विगुणे हो जाते हैं तब वहां तक के जितनी वर्गणाएं हैं उन सभी वर्गणाओं को एक स्पर्धक कहेंगे और वहां से जो अनेक दूसरे जो द्विगुणे वाले जितने जो सारे है और यहाँ से दूसरा स्पर्धक हुआ तो यहाँ तक के जो वर्गणाएं वो पहला स्पर्धक 100 से 199 और ये जो अंतिम है इसमें 199। अब जहाँ वर्गणा में प्रत्येक परमाणु में 200 इसकी शक्ति है उसको हम कहेंगे दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा, ये पहली वर्गणा दूसरी वर्गणा तीसरी वर्गणा ऐसी यहाँ 99 तक हमने पहले स्पर्धक की बात की, यहाँ दूसरा स्पर्धक शुरू हुआ दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा दूसरी वर्गणा तीसरी वर्गणा जहाँ 300 हो जाएगी तीसरा कदम शुरू होगा तो ये तीसरे पदक की पहली वर्ग दूसरी वर्ण है। हरेक पदक में अनंत अनंत वर्णाएं होती है और हरेक वर्णा में सर्व समान होंगे और हमारे प्रतिच्छेद समान होंगे।
उसकी भी चर्चा आएगी क्योंकि अभी हम जब बातें देखने जा रहे हैं आगे लब्धि के प्रकरण में तभी प्रशस्त कर्मों की तो स्थिति घटेगी और अनुभव बढ़ेगा और अप्रशस्त प्रकृति में स्थिति भी घटेगी अनुभव भी घटेगा। ये मोक्ष मार्ग में तो ऐसा ही होता है, इसके आगे तो ऐसे होगा वो बात। अभी हम तो अपकर्षण से कहना स्थिति का घटना या अनुभव का घटना उसको अपकर्षण कहते हैं और वो बढ़ेंगे तो उत्कर्षण होता है। तो वे स्थिति में होता है या अनुभव में होता है उसकी चर्चा जिस स्टेज पर जैसी होगी वो हम आगे बताएं। अभी तो ये यहाँ समाप्त होता है, दोपहर में हम फिर मिलेंगे।